सात असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से जो प्रश्न पूछता है पूर्व निर्धारित नहीं होता है और न ही वह किसी एक खास क्रम में ही इन प्रश्नों को पूछता है। सच्चाई यह है कि इस तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कर्ता किस ढंग का प्रश्न किस क्रम में किस विषय से पूछेगा यह पहले से निर्धारित नहीं होता है। इन सभी चीज़ों को साक्षात्कारकर्ता की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है और वह जैसा उचित समझता है वैसा ही करता है। इस तरह के साक्षात्कार में कोई समय सीमा भी नहीं होती है। किसी किसी विषय से कई मिनटों तक प्रश्न को पूछा जाता है तो किसी किसी विषय से चंद मिनटों में ही निपट लिया जाता है। असंरचित साक्षात्कार पर टिप्पणी करते हुए ब्लैक तथा चैंपियन 1976 ने इस प्रकार कहा है, अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, साक्षात्कार संदर्भ किस तरह के नियंत्रण तथा चेतन प्रतिबंध से जहां तक संभव हो मुक्त या स्वतंत्र रहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैराग्राफ चेंज। असंरचित साक्षात्कार के कुछ लाभ एवं दोष हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नांकित हैं। एक, असंरचित साक्षात्कार की परिस्थिति एक स्वाभाविक परिस्थिति के समान होती है, अतः इस तरह के साक्षात्कार में स्वतः प्रकृति या स्वाभाविकता का गुण पाया जाता है। दो, असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता की समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रतिबंधित ढंग से अनरेस्ट्रिक्टेड मैनर प्रश्नों को पूछने का पर्याप्त अवसर रहता है। दूसरे शब्दों में इस तरह के साक्षात्कार में लचीलापन का गुण अधिक होता है। इन लाभों के बावजूद असंरक्षित साक्षात्कार के कुछ गुण दोष या अवगुण हैं जो निम्नांकित हैं। एक, असंरक्षित साक्षात्कार में एक साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों को दूसरे साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों के साथ वैज्ञानिक तुलना नहीं की जा सकती है। इसका प्रधान कारण यह है कि इस तरह के साक्षात्कार में प्रश्नों के पूछने के तरीके पर साक्षात्कार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। दो, असंरक्षित साक्षात्कार में अधिक समय देकर भी विषय रिस्पॉन्डेंट से अर्थपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि इस तरह के साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाने का क्षेत्र पहले से परिभाषित नहीं रहता है। तीन, असंरक्षित साक्षात्कार में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना कई कारणों से कठिन हो जाता है। इस तरह के आंकड़ों पर सांख्यिकीय परीक्षणों का सही सही अर्थ में उपयोग नहीं किया जा सकता है। चूंकि भिन्न भिन्न साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः उनसे प्राप्त तथ्यों को इस रूप में संक्षिप्त करना संभव नहीं हो पाता है जिसका ठीक ढंग से विश्लेषण किया जा सके। ऐसी परिस्थिति में असंरक्षित साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों की निर्भरता समाप्त हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि साक्षात्कार के कई प्रकार हैं। इन विभिन्न प्रकारों से असंरक्षित साक्षात्कार का प्रयोग तुलनात्मक रूप से साक्षात्कार के अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। एक सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक परिस्थितियां। साक्षात्कार का चाहे जो भी प्रकार क्यों न हो, इसकी सफलता के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है। लिंडसे तथा एरोनसन के अनुसार ऐसी परिस्थितियाँ निम्नांकित तीन हैं। एक, अभिगम्यता, एक्सेसिबिलिटी। किसी साक्षात्कार की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि साक्षात्कार में पूछी गई सूचनाओं का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विषय या प्रत्यर्थी रिस्पॉन्डेंट के लिए आसानी से अभिगम्य या प्राप्त करना संभव हो। दूसरे शब्दों में पूछी गई सूचनाओं का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसे प्रत्यर्थी या विषय आसानी से साक्षात्कार को बिना किसी झिझक के ही कह पाए। दो, संज्ञान, कॉग्निशन। संज्ञान से यहाँ तात्पर्य इस तथ्य से होता है कि प्रत्यर्थी या विषयी को यह पूर्ण रूपेण ज्ञात होना चाहिए कि उसे क्या पूछा जा रहा है तथा किस ढंग की सूचनाएं उसे अपेक्षित हैं। साक्षात्कार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्यर्थी को इस तरह का संज्ञान कॉग्निशन हो, उसे यह स्पष्ट पता हो कि वह क्या कहने जा रहा है और किसी सूचना को वह किस संदर्भ में कहने जा रहा है। कभी कभी यह देखा जाता है कि प्रत्यर्थी को इस आशय का समुचित ज्ञान नहीं होता है कि वह जो सूचनाएं दे रहा है उसे पूछा गया या नहीं, तथा साथ ही साथ उसके इस तथ्य का भी ज्ञान नहीं होता है कि उसके द्वारा की जा रही सूचनाएं संदर्भ में ठीक बैठते हैं या नहीं। ऐसी अवस्था में साक्षात्कारकर्ता की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि वह प्रत्यर्थी या विषय में उचित संज्ञानात्मक ज्ञान उत्पन्न करे ताकि साक्षात्कार सफल हो सके। तीन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। किसी भी साक्षात्कार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विषय या प्रत्यर्थी वैसी सूचनाएं देने के लिए अभिप्रेरित होता है जो उनसे प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। एरोनसन के अनुसार सामान्यतः यह देखा गया है कि साक्षात्कार के प्रारंभ में तो प्रत्यर्थी में उत्सुकता तथा औपचारिकता के नाते अधिक अभिप्रेरणा होती है, परंतु धीरे धीरे वह अभिप्रेरणा समाप्त होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में साक्षात्कार की सफलता पर आँच आने लगती है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि साक्षात्कारकर्ता प्रत्यर्थी में उच्च अभिप्रेरणा बनाए रखे, और इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्यर्थी को यह महसूस कराया जाए कि साक्षात्कार के तथ्य तथा प्रत्यर्थी के लक्ष्य एक समान हैं। उपयुक्त तीनों अवस्थाओं के होने पर किसी साक्षात्कार की सफलता की गारंटी बनी होती है। यदि इन अवस्थाओं जैसी परिस्थिति किसी साक्षात्कार में न हो तो यह साक्षात्कारकर्ता की जवाबदेही होती है कि वैसी परिस्थिति उत्पन्न करके साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न करे। साक्षात्कार के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूज़ ऑफ इंटरव्यू। शोध वैज्ञानिकों ने अनेक ऐसे कारकों की पहचान की है जिनसे साक्षात्कार की उपयोगिता प्रभावित होती पाई गई है। इन कारकों को मुख्य रूप से निम्नांकित तीन भागों में बांटा गया है। एक, साक्षात्कारकर्ता के गुण, क्वालिटीज ऑफ इंटरव्यूअर। दो, प्रत्यर्थी या विषयी के गुण, क्वालिटीज ऑफ इंटरव्यूई। तीन, अध्ययन की जाने वाली समस्या का स्वरूप, नेचर ऑफ प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड। इन कारकों की व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक, साक्षात्कारकर्ता के गुण। साक्षात्कार की उपयोगिता सबसे अधिक साक्षात्कारकर्ता के गुण द्वारा प्रभावित होती है। कुछ शोध वैज्ञानिकों जैसे लेन 1962, सेल्टीच, ज़डोहा तथा कुक 1959 तथा गॉर्डन 1969 ने इन गुणों को दो भागों में बांटा है, आत्मगत गुण तथा वस्तुनिष्ठ गुण। आत्मगत गुणों में साक्षात्कारकर्ता में जिज्ञासु मस्तिष्क, इंक्विजिटिव माइंड, समन्वय स्थापित करने की क्षमता, सामाजिक कौशलता आदि गुणों को प्रधान बतलाया गया है। इन गुणों के होने पर साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार द्वारा अध्ययन की जाने वाली समस्या को ठीक ढंग से प्रत्यर्थी के सामने रख पाता है, और तब वह भी इन समस्याओं का प्रश्नों को समझकर उचित उत्तर दे पाता है। साक्षात्कारकर्ता के वस्तुनिष्ठ गुणों में साक्षात्कारकर्ता के यौन, प्रजाति, सामाजिक वर्ग, बोलने का ढंग, पोशाक पहनने का ढंग आदि को रखा गया है। इन वस्तुनिष्ठ गुणों के कारण साक्षात्कारकर्ता तथा प्रत्यर्थी या विषयी के बीच होने वाली शाब्दिक अंतःक्रिया अधिक आसान एवं मृदु हो जाती है, जिससे साक्षात्कारकर्ता की उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। इन गुणों के कारण साक्षात्कारकर्ता में एक खास ढंग का वातावरण उत्पन्न हो जाता है जिससे प्रत्यर्थी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, और प्रत्यर्थी साक्षात्कार के कार्यों में दिल खोलकर सहयोग करता है। गॉर्डन 1969 ने वस्तुनिष्ठ गुणों की उपयोगिता पर टिप्पणी करते हुए कहा है, कोट, इन गुणों द्वारा सिर्फ एक तात्कालिक प्रभाव की उत्पन्न नहीं होता है, तथा इससे न सिर्फ इस बात का ही निर्धारण होता है कि प्रत्यर्थी साक्षात्कार देने के लिए तैयार होगा, बल्कि उससे साक्षात्कारकर्ता की भूमिका, जिसे वह सफलतापूर्वक कर रहा है, को भी कुछ ठोस बना दिया जाता है। पैराग्राफ चेंज दो, प्रत्यर्थी या विषयी के गुण। चूंकि साक्षात्कारकर्ता तथा प्रत्यर्थी के बीच एक तरह का वार्तालाप होता है, अतः साक्षात्कार की प्रभावशीलता प्रत्यर्थी के गुणों पर भी निर्भर करता है। लेन 1962, डेक्सटर तथा कोरविन 1970 द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी के दो गुणों का प्रभाव साक्षात्कार की प्रभावशीलता पर सीधा पड़ता है। प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित समस्या पर बोलने की क्षमता तथा प्रत्यर्थी द्वारा साक्षात्कार शामिल होने की सहयोगशीलता, विलिंगनेस, पैराग्राफ चेंज, साक्षात्कार की प्रभावशीलता बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कार के लिए चुने गए व्यक्तियों में साक्षात्कार के विषय या समस्या के बारे में सही सही ढंग से अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता हो। यही कारण है कि कुछ छोटे बच्चे तथा मानसिक रूप से बंधित व्यक्तियों जिनमें ऐसी क्षमता का अभाव होता है को साक्षात्कार के लिए चयन नहीं किया जाता है। ऐसे लोग साक्षात्कार की समस्या या विषय पर ठीक ढंग से अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ वैसे व्यक्ति जो विषय या समस्या के जानकार हैं तथा जिनमें अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की अच्छी क्षमता है, वो यदि साक्षात्कार में शामिल किया जाता है तो इससे साक्षात्कार की प्रभावशीलता काफ़ी बढ़ जाती है, तथा साक्षात्कार से प्राप्त दृश्य की विश्वसनीयता भी अधिक होती है। लेन 1970 ने अपने अध्ययन से इस बात की पुष्टि की है। साक्षात्कार की प्रभावशीलता प्रत्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में शामिल होने की सहयोगशीलता पर भी निर्भर करता है। कुछ शोध वैज्ञानिकों का मत है कि साक्षात्कार में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल करना चाहिए जो अपनी स्वेच्छा से साक्षात्कार देना चाहते हैं। इसके पीछे पूर्व कल्पना यह होती है कि ऐसे लोग खुलकर अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति करेंगे और साक्षात्कार को अर्थपूर्ण बना सकेंगे। लेन 1962 ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बतलाया कि वैसे लोग जो स्वेच्छा से साक्षात्कार में भाग लेना नहीं चाहते हैं उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग साक्षात्कार में असहयोग करेंगे और परिणाम दोषपूर्ण हो जाएंगे। हाँ, लेन ने कुछ ऐसी सिफारिशें अवश्य की हैं जिनके द्वारा ऐसे असहयोगी प्रत्यर्थी को साक्षात्कार के लिए तैयार किया जा सकता है। इन सिफारिशों में निम्नांकित प्रमुख हैं। एक, साक्षात्कार के लिए चुने गए प्रत्यर्थी को सहयोग के लिए भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे देखा गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में सहयोगशीलता बढ़ जाती है। दो, अगर प्रत्यर्थी की सुविधा के अनुसार साक्षात्कार किया जाता है तो इससे भी सहयोगशीलता काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे ब्लैक तथा चैंपियन 1976 ने अपने अध्ययन में पाया कि यदि साक्षात्कार प्रत्यर्थी की सुविधा अनुसार उसके द्वारा तय किए गए स्थान तथा समय पर किया जाता है तो इससे अत्यधिक सहयोगी प्रत्यर्थी भी काफ़ी सहयोगशीलता दिखलाने लगते हैं। तीन, प्रत्यर्थी को यदि पूर्णतः विश्वास दिला दिया जाता है कि उसके द्वारा दी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी तथा उसका किसी ढंग से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा तो इससे भी प्रत्यर्थी पहले से अधिक सहयोगशीलता दिखलाना प्रारंभ कर देता है। इस ढंग का आश्वासन खासकर वैसी परिस्थिति में अति आवश्यक हो जाता है जहाँ साक्षात्कार का विषय अधिक संवेदनशील होता है तथा उसकी नैतिकता से संबंधित होता है। तीन, अध्ययन की जाने वाली समस्या का स्वरूप नेचर ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड। साक्षात्कार की प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि साक्षात्कार के द्वारा अध्ययन की जाने वाली समस्या या विषय का स्वरूप क्या है। यदि उसका स्वरूप गुप्त एवं गोपनीय है तो ऐसी अवस्था में कुशल साक्षात्कार एवं उपयुक्त प्रत्यर्थी के होने के बावजूद भी साक्षात्कार अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाता। ग्रेसी 1990 ने अपने अध्ययन में पाया है कि यदि साक्षात्कार का विषय यौन अपनी कमाई आदि से संबंधित होता है तो सामान्यतः साक्षात्कार उतना प्रभावी नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में निबटने के लिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता प्रत्यर्थी को अपने विश्वास में लेकर उससे अत्यधिक घनिष्ठ सौहार्द संबंध स्थापित करके साक्षात्कार की प्रक्रिया आरम्भ करे। इस तरह से यह स्पष्ट हुआ कि साक्षात्कार की प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है। इन कारकों पर उचित ध्यान देकर ही किसी साक्षात्कार की अधिक प्रभावशीलता एवं उसके परिणाम को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज, साक्षात्कार के लाभ तथा परिसीमाएं। साक्षात्कार का चाहे जिस प्रकार का प्रयोग क्यों न किया जाए उसके कुछ सामान्य लाभ एवं सीमाएं हैं जिन पर प्रकाश डालना अपेक्षित है। साक्षात्कार के सहारे किए गए अनेकों अध्ययनों की समीक्षा करने के बाद गॉर्डन ने साक्षात्कार के कुछ लाभों का उल्लेख किया है जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं। एक, साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कारकर्ता कम समय में ही वांछित सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है। दो, साक्षात्कार की एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता पूर्णतः यह आश्वस्त हो जाता है कि प्रत्यर्थी ने पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या ठीक ढंग से की है। तीन, साक्षात्कार में प्रश्नों में लचीलापन होने के कारण शोधकर्ता के लिए कम समय में गहन जानकारी प्राप्त करना संभव हो पाता है। इसके अंतर्गत प्रश्न नहीं समझ में आने पर उसे पुनः दोहरा कर या कुछ परिवर्तन कर पूछा जा सकता है। इस ढंग की सुविधा प्रश्नावली विधि में नहीं है। चार, साक्षात्कार में शोधकर्ता के लिए परिस्थिति पर नियंत्रण रखना काफ़ी आसान होता है जिसका परिणाम यह होता है कि साक्षात्कारकर्ता उचित प्रश्नों को पूछ पाता है तथा साथ ही साथ प्रत्यर्थी उसका उत्तर सही ढंग से दे पाता है। पाँच, साक्षात्कार में शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता को प्रत्यर्थी से कुछ अशाब्दिक संकेत भी प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता प्रत्यर्थी की भाव भंगिमा का भी अवलोकन कर पाता है जो अन्यथा संभव नहीं है। इससे मिलने वाले संकेतों के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तरों का अर्थ सही सही ढंग से समझा जाता है। छः, साक्षात्कार का एक लाभ यह भी है कि इसका प्रयोग सभी तरह के व्यक्तियों पर चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो आसानी से किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज, इन लाभों के बावजूद साक्षात्कार की कुछ सीमाएं हैं जो निम्नांकित हैं। एक, साक्षात्कार में विषय या प्रत्यर्थी द्वारा दी गई शाब्दिक अनुक्रिया की वैधता की को शोध वैज्ञानिकों ने चुनौती देते हुए कहा है कि चूंकि साक्षात्कार में कई बातों के अनुसार शायद ही कभी प्रत्यर्थी अपनी वास्तविक जिंदगी में अंतःक्रिया करता है, अतः साक्षात्कार में की गई शाब्दिक अनुक्रिया के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय को अधिक वैध नहीं माना जा सकता। दो, कई कारणों से ऐसा देखा गया है कि साक्षात्कारकर्ता का ध्यान साक्षात्कार के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा की गई अनुक्रिया पर ठीक ढंग से नहीं जा पाता है। जैसे यदि साक्षात्कारकर्ता काफ़ी थका हुआ है तो वह प्रत्यर्थी की अनुक्रियाओं को ठीक ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर सक पाता है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार के आधार पर कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष पहुंचना संभव नहीं है। तीन, साक्षात्कार में आत्मनिष्ठता का गुण जाता है। अक्सर देखा गया है कि साक्षात्कारकर्ता पहले से कुछ पूर्व निश्चित धारणाओं, आशाओं, पूर्व कल्पनाओं को लेकर साक्षात्कार में पहुंचता है। इस आत्मनिष्ठता के कारण साक्षात्कारकर्ता प्रत्यर्थी के बारे में कुछ आवश्यक अनुमान, व्याख्या आदि करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। चार, सिकोरेल 1964 ने यह बतलाया कि साक्षात्कार संदर्भ एक साक्षात्कार से दूसरे साक्षात्कार तक समान नहीं रहता है। कभी कभी देखा गया है कि साक्षात्कार एक नम्र माहौल में संपन्न हो जाता है तो कभी कभी साक्षात्कार एक सख्त माहौल में पूरा किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि साक्षात्कार संदर्भ में भिन्नता आ जाती है और साक्षात्कारकर्ता द्वारा अलग अलग किए गए साक्षात्कार के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर संभव नहीं हो पाता है। पाँच, ब्लैक तथा चैम्पियन 1976 ने यह बतलाया कि साक्षात्कार में अंतर साक्षात्कारकर्ता भिन्नता पाया जाता है, जिसके कारण भी इसके परिणाम दोषपूर्ण हो जाते हैं। जब कई साक्षात्कारकर्ता एक साथ मिलकर किसी समस्या का समाधान करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि वे एक प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थी के समूह से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग प्रत्यर्थी का धनात्मक रेटिंग करते हैं तो कुछ लोग प्रत्यर्थी का ऋणात्मक रेटिंग करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि साक्षात्कार के आधार पर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव सा हो जाता है। छः, साक्षात्कार समय लेने वाला एक प्रविधि है। साक्षात्कार का स्वरूप चाहे संरक्षित हो या असंरचित हो, इससे आंकड़ों का संग्रहण करने में अधिक समय लगता है, जिसके कारण भी कुछ शोध मनोवैज्ञानिक ने अशुद्धता दिखलाई है। साथ, कुछ शोध विशेषज्ञों जिसमें कर्लिंगर 1986 तथा फेस्टिंगर 1976 का नाम प्रधान है, बतलाया है कि साक्षात्कार में एक समस्या यह भी उठती है कि प्रत्यर्थी द्वारा दी जा रही सूचनाओं को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। अभी तक कोई ऐसी विधि नहीं विकसित की गई है जो सबको मान्य हो। कुछ लोगों ने साक्षात्कार के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए अनुक्रियाओं में से सिर्फ प्रमुख अनुक्रियाओं को साक्षात्कारकर्ता द्वारा रिकॉर्ड करने की सिफारिश किया है, तो कुछ लोगों ने साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता तथा प्रत्यर्थी के बीच हुए पूरे अंतःक्रिया का रिकॉर्डिंग करने की सिफारिश किया है। आलोचकों का मत है कि जब भी साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता कुछ लिखता है तो इससे प्रत्यर्थी पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और उसका मानसिक असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे साक्षात्कार से मिले अनुक्रिया की विश्वसनीयता तथा वैधता समाप्त हो जाती है। इस तरह से स्पष्ट है कि साक्षात्कार में अनेक अच्छाइयाँ होते हुए भी उसमें खामियां हैं, जिसके कारण इस विधि के महत्व पर थोड़ी आँच आई है। फिर भी इस पर विधि का प्रयोग प्रश्नावली तथा अनुसूची के साथ मिलाकर काफ़ी किया जा रहा है। साक्षात्कार में त्रुटियों के प्रमुख स्रोत इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एरर्स इन इंटरव्यूज। यद्यपि साक्षात्कार का प्रयोग मनोवैज्ञानिक शोधों, साइकोलॉजिकल रिसर्च, शैक्षिक शोधों, एजुकेशनल रिसर्चेस एवं समाजशास्त्रीय शोधों, सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस में काफ़ी होता है, फिर भी विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से कुछ वैसे स्रोतों की पहचान कर रखी है जिनसे साक्षात्कार में नाना प्रकार की त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन स्रोतों में निम्नांकित प्रमुख हैं। पैराग्राफ चेंज, एक, साक्षात्कारकर्ता की मनोवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ द इंटरव्यूअर। गॉर्डन 1971 ने साक्षात्कारकर्ता की मनोवृत्ति को साक्षात्कार में होने वाले त्रुटियों का एक प्रमुख स्रोत माना है। जब साक्षात्कार प्रत्यर्थी के बारे में पहले से एक निश्चित प्रतिकूल या अनुकूल मनोवृत्ति बना लेते हैं तो इससे प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तरों का सही सही मूल्यांकन तथा अभिलेखन साक्षात्कारकर्ता द्वारा नहीं हो पाता है और इससे फिर कई तरह की त्रुटियां साक्षात्कार में उत्पन्न हो जाती हैं। दो, प्रश्नों की अबोधगम्यता जब साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होता है जिसे प्रत्यक्ष ठीक ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं, तो उसका उत्तर भी वह सही सही नहीं दे पाता है, और तब ऐसी परिस्थिति में साक्षात्कार में त्रुटि होना अवश्यंभावी हो जाता है। ऐसी अवस्था में जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके आधार पर साक्षात्कारकर्ता हमेशा एक त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष पर ही पहुंच पाते हैं। 3, साक्षात्कारकर्ता परिस्थिति में हार्दिकता की कमी, लैक ऑफ वार्मथ इन द इंटरव्यू सिचुएशन, गॉर्डन 1979 ने यह बतलाया है कि जब साक्षात्कार की परिस्थिति में साक्षात्कारकर्ता द्वारा हार्दिकता तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं दिखलाया जाता है बल्कि इसके जगह पर साक्षात्कारकर्ता कटाक्ष व्यवहार दिखलाते हैं, तो इससे प्रत्यर्थी भी सही सही सूचनाएं प्रदान करने में पूर्ण सहयोग नहीं करता है, और इसका परिणाम यह होता है कि जो भी आंकड़े साक्षात्कारकर्ता द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं वे दोषपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होते हैं। 4, प्रत्यर्थी में प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन इन रिस्पोंडेंट्स। जब साक्षात्कार के प्रति बुलाए गए प्रत्यर्थी किसी कारण से साक्षात्कार देने के लिए अधिक प्रेरित नहीं होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में भी साक्षात्कार के आंकड़े त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में वास्तविकता नहीं होती है और वह प्रत्यर्थी के वास्तविक विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। प्रेरणा के अभाव में प्रत्यर्थी साक्षात्कार में प्रश्नों का उत्तर मात्र हाँ नहीं में देकर हट जाना चाहते हैं। साक्षात्कारकर्ता द्वारा जोर दिए जाने पर वे कभी कुछ बोल देते अवश्य हैं, परंतु उससे कोई खास मतलब सिद्ध नहीं होता है। स्वभावतः ऐसी परिस्थिति में प्राप्त आंकड़े त्रुटिपूर्ण एवं दोषपूर्ण इस हद तक हो जाते हैं कि उससे किसी प्रकार की वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। पैराग्राफ चेंज 5, साक्षात्कार की लंबी अवधि। ग्रेसी का मत है कि साक्षात्कार की अवधि लंबी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 15 से 20 मिनट के साक्षात्कार को एक आदर्श साक्षात्कार कहा है, और ऐसे साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। परंतु यदि साक्षात्कार की अवधि इससे भी लंबी खिंच जाती है, तो वैसी परिस्थिति में सामान्यतः त्रुटिपूर्ण आंकड़ों के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लंबी अवधि तक साक्षात्कार होने से प्रत्यर्थी में घबराहट एवं अनसंवेगात्मक अस्थिरता बढ़ने लगती है, और इसके द्वारा दिए गए उत्तरों से कोई स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि साक्षात्कार में त्रुटियाँ के अनेक स्रोत हैं। इन स्रोतों को ध्यान में रखकर ही साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार की रस्म संपन्न करनी चाहिए।